फ्लाइट का समय हो चुका है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है और बोर्डिंग कार्ड हाथ में लिए मैं लॉन्ज में बैठा हूं। तो अलविदा मेरे प्यारे देश, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, बस एक घर ही तो नहीं दिया, घर नाम के दो शब्दों के लिए तूने मुझे कितना रुलाया है। शायद मृग मरीज का भी इससे कम तकलीफ वाली बात होगी, एक ही जन्म में कितना कितना तो भोग दिया मैंने, हर बार मेरे लिए ही घर चलावा क्यों बना रहा। मैं एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, खोजता रहा कहां है मेरा घर। अब मेरे सामने एक नया देश है, नए लोग, एकदम नया वातावरण, एक नई तरह की जिंदगी की शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। यहां आकर मेरी दिनचर्या बिल्कुल बदल गई है, सब कुछ नया नया और हल्का हल्का सा लग रहा है, जिंदगी को नया अर्थ मिल रहे हैं। इतने बरस तक उपेक्षित और अकेले रहने के बाद सारा संसार भरा पूरा अपनेपन से सराबोर लग रहा है। शादी के पहले दिन से लगातार दावतों का सिलसिला चल रहा है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब हमें कहीं लंच या डिनर के लिए नहीं जाना होता। गौरी इस शादी से बहुत खुश है, जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं, हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का मौका मिल रहा है। वो मेरे डरावने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती, जानना भी नहीं चाहिए। मैंने उसे अपने घर परिवार के बारे में बहुत कम बातें बताई हैं, सिर्फ बुद्धि के बारे में बताया है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहती है और कविताएं लिखती है। मैंने गौरी को जब बुद्धि का बनाया स्वेटर दिखाया तो उसने तुरंत ही वो स्वेटर मुझसे हथिया लिया और इच्छाती हुई बोली, है कितना सॉफ्ट और शानदार बनाया है स्वेटर, अब तो ये मेरा हो गया, तुम उसे मेरी तरफ से लिख देना कि तुम्हें एक और बनाकर भेजे, जब लेटर लिखो तो मेरी तरफ से खूब थैंक्स लिख देना और मेरी तरफ से ये गिफ्ट भी भेज देना। और उसने अपनी अलमारी से गुड्डी के लिए एक शानदार गिफ्ट निकालकर दे दिया। मुझे गुड्डी पर गर्व हो रहा था कि उसकी बनाई चीज किस तरह से गौरी ने प्यार से अपने लिए रख ली। गौरी को दुनियादारी की बातों से कोई लेना देना नहीं, आजकल तो ऐसे भी उसकी जिंदगी के बस दो चार मकसद रह गए हैं, यानी खूब खाना, सोना और भरपूर सेक्स। इनके अलावा उसे न कुछ सोचता है न वो सोचना चाहती है। मैं भी तो जन्मधर्म का प्यासा हूं, प्यार के लिए भी और शरीर की जरूरतों के हिसाब से भी। मुझे लगने लगा है कि मेरे सारे दुख दरिद्र अब खत्म हो गए हैं, कैसा भी और किन शर्तों पर भी अब मुझे मेरा घर मिल गया है। मैं हमेशा अपने कमरे में, अपनी दिनचर्या में और अपनी जिंदगी में भी अकेला ही रहा, अकेले सोने के अलावा दूसरी बात सोची नहीं जा सकती थी। लेकिन अब गौरी जिस तरह रात भर मुझसे लिपट कर सोना चाहती है, मुझे घबराहट सी होने लगती है। बेशक थोड़ी देर में वो पांच मिनट में ही गले लिपते लिपते खर्राटे भरने लगती है। लगता है सोने के मामले में हम दोनों को ही अपनी आदतें बदलनी होंगी, या उसे बता देना पड़ेगा कि हम बेशक एक साथ सोएं लेकिन गले लिपते लिपते सोने से मेरा दम घुटता है। शायद मेरे देसी संस्कार हो या इस तरह के संबंधों के बारे में मेरे बिल्कुल ही अनाड़ी और कोरा होना, मैं कई बार उतना खुलापन नहीं दिखा पाता। लेकिन गौरी के व्यक्तित्व में जो खुलापन है, उसकी परवरिश जिस तरह की है और जिस खुलेपन के वातावरण में वो रह रही है, उसे देखते हुए गौरी इस मामले में बहुत तेज है। शी इज टू स्मार्ट इन बेड, वो सारी चीजें इतनी अच्छी तरह से मैनेज करती है कि मैं संकोच में पड़ जाता हूं। बस एक ही बात मेरे पक्ष में है कि कच्चा और अनाड़ी होने के बावजूद आखिर में हीरो मैं ही होता हूं, वो मेरी इसी बात पर फैला है। गौरी के पास इस वक्त ढेरों बातें होती हैं करने के लिए, वो हर वक्त कोई ना कोई मजेदार किस्सा सुनाती रहती है। कई बार मुझे लगता है हमारी गुड्डी को भी अगर जिंदगी में मौके मिले तो वो भी गौरी की तरह आत्मविश्वास से छलछलाती रहे। चलो गुड्डी को पत्र ही लिख लिया जाए। प्यारी बहना गुड्डी, तुम्हें आखिर लंदन पहुंच ही गया। पिछले 20 तारीख को जब मैं यहां हिथ्रो हवाई अड्डे पर उतरा तो हांडा परिवार के कई लोग मुझे लेने आए हुए थे। ان میں سے میں صرف دو ہی لوگوں کو پہچانتا تھا، ایک گوری کے چاچا چمن ہانڈا کو اور دوسرے گوری کے کزن راج کمار ہانڈا کو۔ یہ لوگ ہی مجھے ممبئی میں ملے تھے اور ان سے ہی ساری باتیں ہوئی تھی۔ مجھے ایئرپورٹ سے سیدھے ہانڈا کمپنیز کے گیسٹ ہاؤس میں لے جایا گیا، وہی مجھے ٹھہرایا گیا۔ شام کو گوری ملنے آئی تھی اپنی دو کزنس کے ساتھ، تھوڑی دیر حال چال پوچھے، کافی پی اور چلی گئی۔ جاتے جاتے اپنا فون نمبر دے گئی، کہا فون کروں گی اور آپ کو ضرورت پڑے تو آپ بھی فون کر لیں۔ میرے لیے وہ لوگ شوفر ڈیوین گاڑی چھوڑ گئے تھے، میری سیوا کے لیے ہانڈا پریوار کا ہی ایک لڑکا اور ایک اسٹاف ممبر تھے ہی۔ شام کو یوں ہی اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا، آس پاس گھومنے چل دیا۔ میں نے لندن کی جتنی تعریف سنی تھی اس سے ادھک ہی پایا۔ بے شک ابھی تو یہ سب دیکھنا باہری اور اوپر پر سے ہے، لیکن جو بھی ہے وہ آکرشک اور من موہنے والا۔ سب سے اچھی بات تو مجھے یہاں لگی ہے، وہ ہے انسان کی قدر، بہتر جیون اور ایک طرح کا کھلاپن جو ابھی اگلے 50 برس تک اپنے یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ بمبئی کے بھیڑ بھرے ماحول، گندگی اور اویوستھت جیون کے ماحول سے نکل کر یہاں اتنا کھلاپن، ویوستھا، تازگی اور شانت ماحول دیکھ کر یقین ہی نہیں ہو رہا کہ جیون اتنا بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں عجیب لگ سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے کہ ہم اپنے دیش میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، ہر طرح سے سادھن سمپن ہوتے ہوئے بھی، کتنا گھٹیا جیون جینے کو اب شبت ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس جیون جینے کا سلیقہ نہیں، اور نہ ہی انسان اور انسانی مولیوں کے قدر، نہ صفائی میں، نہ ویوستھا میں، نہ آپسی ویوہار میں، اور نہ ہی انوشاسن میں۔ اپنے خود کی جیون شیلی تو ہم آج تک وکست نہیں کر پائے۔ ہنسی آ رہی تھی سوچتے ہوئے کہ یہ انگریز خود کو کتنے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں اور ہمارے حصے میں کتنی بیکار کی زندگی چھوڑ گئے ہیں کہ لو اور بھوگو اپنے کرموں کا پھل۔ لندن کی دھرتی پر پاؤں رکھتے ہی بہت ہلکا ہلکا سکون بھرا لگ رہا ہے، ایک دم شانت۔ کمال ہے گڈی، پھر میں بھی کیسا پاگل ہوں، بمبئی اور لندن کی تلنا تمہارے سامنے کر رہا ہوں جو ایسے شہر میں رہتی ہے جہاں شاید ہی کوئی 4 منزلہ عمارت ہو۔ میں بتا رہا تھا مجھے یہاں سب سے اچھی بات ٹریفک کی لگی، بے حد ویوستھت۔ مجال ہے کوئی بچہ سڑک پار کرنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے دونوں طرف کا پورا ٹریفک بنا بتائے ہی رک نہ جائے۔ ویسے تو ہر چوراہے کے پاس سیلف انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں جہاں بچے یا کوئی بھی سڑک پار کرنے والے کے لیے بٹن دبا کر ٹریفک رکوایا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے اپنی گاڑی روکتے ہوئے ڈرائیور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بمبئی میں تو مرین ڈرائیو کی سڑک پار کرنے کے لیے آپ کو 10-10 منٹ کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور وہ بھی بھاگ کر سڑک پار کرنی پڑتی ہے۔ یہاں کسی کے لیے ہارن بجانا کسی گالی سے کم نہیں ہوتا۔ لندن میں یہ ساری سویدھائیں سب کے لیے اپلبدھ ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ایسے دیش میں عام طور پر اپلبدھ ہونا ایک معمولی بات ہے، جن کے سامراج میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ دوسری سب سے اچھی بات جو مجھے یہاں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنا سارا کام خود کرنے کی اچھی عادت، یہاں تک کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو کھانے کے بعد اپنے برتن بھی خود دھو پہنچ کر ایک طرف رکھ دینے کی پرمپرا ہے۔ اپنے ہاتھوں گھر کے مرد لوگ بھی اپنا جھوٹا گلاس اٹھا کر رسوئی میں رکھنے میں توہین سمجھتے ہیں۔ یہ تو لندن کے بارے میں میرے اوپری اوپری انوبھو ہیں۔ بہتری زندگی کیا ہے، کیسی ہے، ان میں کتنی طرح کی پیچیدگیاں ہیں، یہ تو سمے بتائے گا۔ میں تمہیں آگے بھی یہاں کے بارے میں لکھتا رہوں گا۔ جس بات سے میں ان دنوں خاصا پریشان ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں ہر سمے روشنی رہتی ہے۔ صبح 4 بجے سے جو روشنی شروع ہو جاتی ہے رات 10 بجے تک رہتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب رات ہوئی اور کب دن واپس نکل آیا۔ مجھے اندھیرے میں سونے کی عادت ہے اور یہاں کھڑکیوں کے پردے بھی سفید ہی ہوتے ہیں، لگ بھگ سبھی گھروں میں ہلکے سفید جالی دار پردے اچھے بھی لگتے ہیں۔ کیسے بھی کر کے میں روشنی میں سو نہیں پاتا۔ خیر 2-4 دن میری خوب سیوا ہوئی، سر سے ملوایا گیا، हैना परिवार के मुखिया से भी। वे गौरी के ताऊ जी हैं। सबसे पहले वे ही 50 साल पहले यहां आए थे और धीरे धीरे अपनी बड़ी जायदाद खड़ी की। इन 50 वर्षों में कम से कम नहीं तो अपने 100 आदमी तो लंदन ले ही आए होंगे। अपने आप में बेहद दिलचस्प, उनके बारे में बाद में और भी लिखूंगा। इसके बाद गौरी ने अपने पापा से भी मिलवाया और मम्मी से भी। पापा वैसे तो ठीक लगे लेकिन टू मच बिजनेस माइंडेड, हर वक्त बिजनेस की बात, पाउंड और डॉलर की ही बात। शायद एम्पायर्स इसी तरह खड़ी की जाती होंगी। खैर, इतनी जल्दी किसी भी तरह की राय बनाना जल्दबाजी होगी। यहां लंदन में इंडियन अमीरों की एक बस्ती है, कारपेंडर्स पार्क, वहीं मेरी ससुराल की भव्य इमारत है। वैसे सबसे अलग अलग अपार्टमेंट हैं और सबके अलग अलग इलाकों में, लेकिन आमतौर पर पारिवारिक आयोजन यहीं किए जाते हैं और सलाह मशवरे लेने भी सारे फैमिली मेंबर्स यहीं आते हैं। लो, मेरी भी शादी हो गई। हमारी शादी यानी मेरी और गौरी की, बिल्लू की शादी के आगे पीछे। हमारी शादी 2 तरह से हुई। पहले कोर्ट में, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के ऑफिस में, और बाद में पूरी बिरादरी के सामने आर्य समाजी तरीके से। अपनी शादी में लड़के वालों की तरफ से तो मैं अकेला ही था। मैं ही दूल्हा, मैं ही बराती सबाला और मैं ही बैंड मास्टर। बहुत ही भव्य तरीके से हुई शादी। हमारी शादी में हांडा कंपनीज के सारे एम्प्लाइज, क्लाइंट्स, नाते रिश्तेदार और दोस्तों थे ही, दूसरे फील्ड्स के भी लोग थे। सबसे हाथ मिलाते मिलाते भाई मेरा तो हाथ ही दुख गया। एक तो यहां के उच्चारण की न तो हिंदी ही मैं आसानी से समझ पाता हूं और न अंग्रेजी ही, इसलिए लोगों की आधी बात तो मुझ तक पहुंचती ही नहीं। शादी में इतने गिफ्ट आए कि पूछो नहीं। मुझे ससुर साहब ने नई लेक्सस कार की चाबी दी और गौरी को फर्निश्ड अपार्टमेंट की चाबी। ये कार यहां की काफी शानदार कार मानी जाती है। जब मैंने कहा कि मुझे तो कार चलाने ही नहीं आती, तो उन्होंने गौरी का हाथ मेरे हाथ में थमा दिया और बोले, ये लो जी शोफर भी लो, और हां टर्म्स खुद ही तय कर लेना। हमारा अपार्टमेंट हैरो विल्ड इलाके में है। पूरा इलाका तो अभी देख नहीं पाया हूं, लेकिन आमतौर पर यहां इंडियंस और एशियंस ही रहते हैं। यहां सारे के सारे घर 2 मंजिला हैं, एक तरफ गैराज, आगे पीछे 2 कमरे, बाथरूम, किचन, लैट्रिन, और एक बड़ा कमरा पीछे की तरफ थोड़ा सा लॉन, और ऊपर 2 कमरे और बाथरूम वगैरह। यहां बालकनी का कोई रिवाज नहीं। हमें अगले हफ्ते हनीमून के लिए पेरिस जाना है। वैसे तो यहीं ही इतना घूमना फिरना और मौज मस्ती हो रहे हैं कि हम दोनों ही लगातार सातवें आसमान पर हैं, खूब दावतें खा रहे हैं। एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। अपना ख्याल रखना, दारजी और बेबे को मेरी सत श्री अकाल कहना, और गोलू और बिल्लू को प्यार। मेरी छोटी भाभी के लिए भी एक तोहफा मेरी तरफ से। बेबे की तबीयत नई बहू के आने से संभल गई होगी। पता दे रहा हूं, अपना समाचार देना। तेरा वीर दी। अलका दीदी और नंदू को भी इसी तरह के लंबे लंबे पत्र भेजता हूं। शादी के कुछ फोटो और लंदन के कुछ पिक्चर पोस्ट कार्ड भी भेजता हूं। दीदी को विस्तार से लिखता हूं कि अब उनके इस राजा भैया का घर ठीक ठाक बस गया है और अब मेरे लिए आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं। गौरी मेरे लिए क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म लाई है, मैंने मना कर दिया है। भाई मुझे क्या करना क्रेडिट कार्ड या एटीएम, क्यों वेरिस जाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। वैसे भी यहां कोई भी किसी भी काम को के लिए कैश लेकर नहीं चलता। दिन में 10 तरह के पेमेंट करने पड़ते हैं, या तो एटीएम कार्ड इस्तेमाल करो और या क्रेडिट कार्ड, दोनों के बिना तो एक दिन भी गुजारा नहीं। देखो गौरी भाई, मैं क्या करूंगा ये कार्ड वार्ड लेकर, न तो मुझे अलग से कोई शॉपिंग करनी है और न ही पेमेंट करने की मुझे जरूरत पड़ेगी, और फिर तुम तो हो ना मेरे साथ, 24 घंटे चलता फिरता एटीएम, तुम करती रहना पेमेंट। अरे समझा करो दीप, तुम्हें सिर्फ खर्च करना है, तुम्हें क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने या अकाउंट में पैसे डालने के लिए कौन कह रहा है? उसके लिए हांडा ग्रुप है ना? फिलहाल रहने दो, बाद में देखेंगे। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। पेरिस का हनीमून रहा, बहुत बढ़िया। शानदार रहना, शानदार घूमना फिरना, सब कुछ भव्य तरीके से, सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई थी। चलते समय ससुर साहब ने मुझे एक भारी सा लिफाफा पकड़ाया था। जब मैंने पूछा कि क्या है इसमें, तो हंसे, भाई आप अपना तो कर लेंगे, लेकिन सोफर के लिए तो खर्चा पानी चाहिए ही होगा ना। थोड़ी बहुत करेंसी है। गौरी बता रही थी कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए यह अकाउंट खोलने के लिए मना कर दिया है, यहां उसके बिना चलता नहीं है। वैसे आपकी मर्जी। वो लिफाफा मैंने उनके सामने ही गौरी को थमा दिया। हमारी तो पैकेज डील है, जितना खर्च हो वो करे और बाकी जो बचे वो टिप। गौरी खिलखिलाई थी। पापा, आपने तो कमाल का दामाद ढूंढा है, यहां तो इतनी टिप मिल जाया करेगी कि कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं हंस पड़ा हूं, हमारे साथ रहोगी तो यूं ही ऐश करोगी। पेरिस बहुत अच्छा लगा। हम दोनों ही साथ में आसमान पर रहे। हनीमून से लौटे, हमें अब तीसरा दिन है। अब तक बेशक हम गौरी के नए घर में ही थे, लेकिन लगातार दावतों के चक्कर में किचन की शुरुआत ही नहीं हो पाई। अब हम सारी चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं। गौरी यह देखकर दंग है कि मैं न केवल रसोई की तरह की व्यवस्था संभाल सकता हूं, बल्कि घर भर के सभी काम कर सकता हूं और कर भी रहा हूं। पूछ रही है, आपने ये सब जनानियों वाले काम कब सीखे? आपकी पढ़ाई को देखकर लगता तो नहीं कि इन सबके लिए समय मिल पाता होगा। अजीत सिर्फ जनानियों वाले काम ही नहीं, मैं तो हर तरह के काम जानता हूं। देख तो रही हो, कर ही रहा हूं। कोई भी काम सीखने की इच्छा हो तो एक ही बार में सीखा जा सकता है, उसे बार बार सीखने या सिखाने की जरूरत नहीं होती। और फिर शौक रहा और सारी चीजें अपने आप आ गई। थैंक्स दी, अच्छा लगा है जानकर कि आप चीजों के बारे में इतने खुलेपन से सोचते हैं। मेरे लिए तो और भी अच्छा है। यहां तो माइंडिंग और रिपेयरिंग के चक्कर में पड़ने के बजाय चीजें फेंक देना आसान समझा जाता है। अब आप गड़बड़ की बिगड़ी चीजें ठीक करते रहना। हो सकता है यहां लंदन में चीजें रिपेयर कराना महंगा पड़ता हो और उसके बदले नई चीज खरीद लेना सस्ता, लेकिन हमारे यहां इंडिया में ऐसा नहीं है। हम तो किसी भी चीज को आखिर तक इस्तेमाल करने में और रिसाइकिलिंग में विश्वास करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे यहां जितने लोग प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उससे 10 गुना मेंडिंग और रिपेयरिंग से रोजगार कमा रहे हैं। रिसाइकिलिंग में तो खैर हम उस्ताद हैं ही। वैसे मैंने यहां भी न्यूज़पेपर और बॉटल्स वगैरह की रिसाइकिलिंग के लिए सड़कों के किनारे रखे बड़े बड़े ड्रम देखे हैं। वो तो मुझे भी पता है कि आप लोग किसी भी आइटम के ऐसे ऐसे यूज ढूंढ लेते हैं कि कंपनी वाले भी हैरान रह जाए। मैंने खुद बॉम्बे की पुरानी ट्रक बैटरी से ऑडियो कैसेट बेचने वाले को कैसेट प्लेयर बजाते देखा था। मैंने उसके स्नैप भी लिए थे। ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहां तो किसी भी आइटम का नया यूज ढूंढने के लिए कुछ भी हो सकता है। पंजाब में लोग मक्खन निकालने के लिए, चर्निंग के लिए पता है वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल तक करते हैं, और यूपी के लोग तो उनके भी गुरु, वे डीजल से चलने वाले बूस्टर को 4 पहिए की गाड़ी में फिट कर देते हैं और उसमें 10-10 सवारियां बिठाकर सैकड़ों रुपए रोज पीटते हैं। वे पहिए में ही ब्रेक फिट कर देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी, रेली। आई जस्ट कांट बिलीव, ऐसा भी हो सकता है। कहीं आप लोग कंडोम को भी दोबारा